हरे राम 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 हरे हरे राधा गिरधारी राधा गिरधारी राधे राधे जय गौरांगीताय 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 जय गौरांगीताय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैवं नरोत्तमं देवीं सत्सदिव्यासं ततो जयामुदीरये नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिरा भवति नैष्टिकी। आज हम श्रीमद् भागवतम के नवम स्कंद 21वां अध्याय, इनका शीर्षक है भरत का वंश और श्लोक संख्या नंबर 12। कृपा करके मेरे पीछे इन शब्दों को दोहराइएगा। ना कमाए गति ईश्वरा पराम अष्टरिद्धियुक्ता अपुनभवम् अर्तिम प्राप्य प्राप्ये प्रपद्ये अखिल देह भाजा अंतस्थित अदुख न कामयेहं गतिमीश्वरात्परां अतर्थियुक्तम् अपुनर्भवं वा अर्थिं प्रपत्ते अखिल देह भाजां अन्तस्थितो येन भवन्ति अदुखा न कामायेऽहं गतिमीश्वरात् पराम् अस्तर्थियुक्तम् अपुनर्भवं वा अर्तिं प्रपद्ये अखिल देह भाजां अन्तस्थितो येन भवन्ति अदुखा
Thank you.
शब्दार्थ इस प्रकार है, कामये नहीं चाहता अहम मैं गतिम गंतव्य ईश्वरा भगवान से परम महान अष्ट अष्ट सिद्धियुक्तम आठ प्रकार की सिद्धियों से रचित अपुनर्भवम बारंबार जन्म का अंत तथा मोक्ष व अथवा आर्थितम कष्ट प्रपद्ये स्वीकार करता हूँ अखिल ध्येय भाजाम सारे जीवों के अंतः स्थित भीतर स्थित येना जिससे भवंती होते हैं अदुख दुख रहित। अनुवाद और तात्पर्य कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा श्रील प्रभुपाद की अनुवाद। मैं ईश्वर से न तो योग की अष्ट सिद्धियों के लिए प्रार्थना करता हूँ न जन्म मृत्यु के चक्कर से मोक्ष की कामना करता हूँ। मैं सारे जीवों में निवास करके उनके लिए सारे कष्टों का भोजन चाहता हूँ। जिससे वे कष्ट से मुक्त हो सके। तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद बताते हैं, वासुदेव दत्त ने भी श्री चैतन्य महाप्रभु से इसी प्रकार प्रार्थना की थी कि वे अपनी उपस्थिति में सारे जीवों को मुक्त कर दे। उसने कहा कि यदि ये जीव मुक्त होने लायक न हो तो वह उन सबों के पाप फलों को अपने ऊपर ले सकता है और स्वयं कष्ट भोग सकता है, जिससे भगवान उन सब का उद्धार कर सके। इसीलिए वैष्णव को पर दुख दुखी कहा गया है। इस तरह वैष्णव मानव समाज के कल्याण कार्यों में अपने आप को लगाता है। हनुमान एक बार फिर पढ़ता हूं, मैं ईश्वर से न तो योग की अष्ट सिद्धियों के लिए प्रार्थना करता हूँ न जन्म मृत्यु के चक्कर से मोक्ष की कामना करता हूँ। मैं सारे जीवों में निवास करके उनके लिए सारे कष्टों को भोगना चाहता हूँ, जिससे वे कष्ट से मुक्त हो सके। होम ज्ञाने नीरानंदस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः श्रीचैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले रूपविरामयं ददाति स्वप्रान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपथकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्र जातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं साद्वदूतं परिजन सहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधां कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितंश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषुभांग सुधे देवी प्रणमामि हरिप्रिय वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौरभक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण। इन प्रसंगों में जहां पर रंती देव की असीम भक्ति की महिमा का वर्णन आता है कि किस प्रकार रंती देव स्वयं अपने शारीरिक सारे सुखों को परित्याग करते हुए लोक कल्याण के लिए किस प्रकार वो आतुर थे, और इसलिए श्री प्रभुपाद भी इसके तात्पर्य में वर्णन करते हैं कि पर दुख दुखी, कि किस प्रकार वैष्णवगण होते हैं वो दूसरे के दुखों को देखकर खुद ही दुखी हो जाते हैं। तो वैसे अब वो स्वयं दूसरे को दुखों को भोगने के लिए तैयार है, लेकिन दूसरे के दुखों दूसरे लोग जब अपने दुखों को भोगते हैं तो वो दुख सहा नहीं जाता, लेकिन वो दुख उन लोग सह सकते हैं जब वो दूसरे के दुखों को अपने सर पर ले लें। तो वैसे रंती देव ऐसे एक महान भक्त होने के नाते उन्होंने एक सुंदर इस प्रार्थना के द्वारा वर्णन करते हैं, न कामायम अहम गतिम ईश्वरात परम, मैं भगवान से किसी भी प्रकार की कामना नहीं करता हूं, यहां तक कि अष्टरिद्धि युक्तम, ना ही मैं भगवान से किसी भी प्रकार का अष्ट सिद्धि चाहता हूं, और अपुनर्भवम, ना ही मैं भगवान से इस प्रकार पूर्व जन्म मृत्यु के चक्कर से छूटने के लिए कामना करता हूं। जय श्री श्री राधा गिरधारी भगवान की जय, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा माई की जय। ना ही मैं भगवान से जन्म मृत्यु के चक्कर से छूटने की कामना करता हूं, तो क्या करता हूं, अर्थिम प्रपत्ते अखिल देह भाजम अंत स्थित ये न भवंती अदुख, जितने भी जीव आत्मा अखिल देह भाजाम, जो भी जीव आत्मा इस संसार में कष्ट को भोग रहे हैं, तो वो क्या कहते हैं कि इन सारे जीव आत्माओं का कष्ट मैं स्वयं भोगने को मैं स्वयं भोगना चाहता हूं। तो यहां पर महाराज रंती देव यहाँ पर अष्ट सिद्धि के विषय में कहते हैं कि ये जो अष्ट सिद्धि जो है मुझे इसकी कोई कामना नहीं। अष्ट सिद्धि यानी कि क्या, जो आठ प्रकार के विशेष प्रकार की सिद्धियां होती हैं। अनिमा यानी कि ये अष्ट सिद्धि का ये पहला, अनिमा यानी कि जो सब छोटा से छोटा होना, लगीमा यानी कि जो हल्के से हल्का होना, अनिमा लगीमा और महिमा यानी कि भारी से भारी होना, और प्राप्ति यानी कि किसी भी प्रकार की वस्तुओं को अगर उसे प्राप्त करना है तो वो कहीं पर भी किसी भी स्थान पर होगा तो वो किसी भी अन्य स्थान का भी वस्तु को प्राप्त कर सकता है, और फिर प्रकाम्य यानी कि वो जब विषय भोग में लगता है तब वो किसी भी प्रकार से उस विषय भोग में उसे वो उस वस्तु से परेशान ना हो, और इष्टवा यानी कि उनके अंदर ऐसी शक्ति आए कि वो कुछ वस्तु को ना भी कर सके और उसको प्रकट भी कर सके या बना भी दे। वसीत्वा यानी कि किसी वस्तु पर नियंत्रण करना, और काम वसेता यानी कि किसी भी प्रकार की कामनाओं को वो पूरा कर सके। तो ऐसे आठ प्रकार की वो सिद्धियों को जो कि ये योग अष्टांग योग सिद्धि के द्वारा व्यक्ति इस योग सिद्धि को प्राप्त करता है, लेकिन ये भक्तगण होते हैं वो जो भगवान के उच्च कोटि के जो भक्त होते हैं वो ऐसी कामनाओं को भी परित्याग करते हैं, और इसलिए रंतीदेव महाराज कहते हैं कि मुझे इस प्रकार की भी सिद्धि की कोई आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ तक कि केवल ऐसे नहीं, इतना ही नहीं, यहाँ तक कि जन्म मृत्यु के चक्कर से छूटने की भी किसी भी प्रकार की कामना नहीं है। तो ये भक्तों का ये वास्तविक सर्वोच्च जो उद्देश्य है और वो है भगवान का प्रेम पूर्वक सेवा करना। और यहाँ पर ये इस दृश्य को हम देख सकते हैं। तो रंतिदेव महाराज बता रहे हैं कि मुझे केवल एकमात्र यही कामना है कि सारे जीवो लोग जो इस संसार में कष्ट को भोग रहे हैं वो सारे कष्ट से वो छुटकारा प्राप्त करें, यहां तक कि वो स्वयं उस दुखों को सहने को तैयार है। तो भगवान के भक्त जो होते हैं वो अलग अलग प्रकार से भगवान की सेवा करते हैं। तो जो सेवा का भाव जो होता है अलग अलग स्तर का होता है। ये जो स्तर है सर्वोच्च प्रकार का स्तर है। तो एक स्तर होता है जो भय पूर्वक होता है और दूसरा स्तर होता है जो कि भगवान की सेवा करना और वो है कुछ लालसा के लिए या कुछ हेतु के लिए करना, और एक स्तर का होता है कि कुछ नाम चिन्ह यानी कि प्रसिद्धि प्राप्त करने के लिए, और एक स्तर जो सर्वोच्च स्तर है वो है प्रेम का। और ये जो विषय जो है वामन प्रसंग में, वामन देव के प्रसंग में जहां पर बलि महाराज शुक्राचार्य को वर्णन करते हुए समझाते हैं कि किस प्रकार अलग अलग भाव से जीव जो है सेवा करते हैं, तो सबसे पहले वो बताते हैं। जब शुक्राचार्य ने कहा कि इस हरि को तुम दान मत देना है, तुम्हारा सब हर लेगा, ये बटु ब्राह्मण कौन है, स्वयं भगवान है, और उन्होंने भगवान का भविष्यवाणी भी लिया कि ये पहले कदम में नीचे का लोग, दूसरे कदम में ऊपर का लोग, और तीसरा कदम पूछेंगे कहाँ रखूं। तो शुक्राचार्य के पास इतनी विद्वता थी और इतना होने के बाद उन्होंने बलि महाराज के भौतिक ऐश्वर्यों के प्रति उन्होंने चिंता करते हुए उन्होंने कहा कि तुम इन्हें दान मत दो। लेकिन बलि महाराज कहने लगे, मैंने तो पहले ही वादा कर दिया हूं, तो मैं अपने वादा से पीछे कदम नहीं लूंगा। तब वो कहते हैं कि मैं क्यों इन्हें दान दूं, तो पहले बताते नहीं, असत्य पर धर्म इति उवाचा भुविर इयम सर्वम शोधम अलम मन्ने रित्ते अलिखम परम नरका। तो कहते नहीं, असत्य पर धर्म इति उवाचा भुविर, ये जो भूमि जो है ये भूमि सभी कुछ सह सकती है लेकिन एक वस्तु को सह नहीं सकती है, और वो है झूठ। जो झूठ बोलना ये भूमि को सहा नहीं जाता, तो झूठा वादा जो है वो भूमि को सहा नहीं जाता। और इस डर से हमें जो हमने जो वादा किया है वो तो कम से कम करना चाहिए। तो यहाँ पर बलि महाराज पहले ही लक्षण को प्रकट कर रहे हैं कि मैं सेवा क्यों करूं, तो बता रहे हैं क्योंकि जो भय के द्वारा यानी कि भगवान की सेवा अगर नहीं करेंगे तो अलग अलग प्रकार के दुर्घटना घट सकती है। तो कुछ ऐसे भक्तगण हैं जो डर कर भगवान की सेवा में लग जाते हैं, जैसे प्राचीन वरिष्ठ नारद मुनि ने उनको उनके आने वाले समय का जब उन्होंने लक्षण दिखाया तो प्राचीन वरिष्ठ घबरा कर भयभीत होकर वो भगवान की भक्ति में लग गए। तो यह है फियरिंग गॉड यानी कि भय से भगवान की सेवा करना। फिर आगे बताते हैं कि मैं क्यों इनकी सेवा करना चाहता हूं या इनको दान देना चाहता हूं, इसलिए इहर इयम भुजे ब्राह्मण तेषां कालो ग्रसिल लोकान न यशो अधिकतम भुवि। तो कहते हैं कि काल का चक्र ऐसा है कि अंततः गत्वा ये सब कुछ हर लेगा, जो भी संपत्ति है वो सारी संपत्ति को काल के चक्र छीन लेंगे, लेकिन एक वस्तु को छीन नहीं सकता है और वो है यश। तो वो जो यश जो है उस यश को व्यक्ति छीन नहीं सकता, इसलिए मुझे इन्हें दान देना जरूरी है। क्योंकि एक एक जो ऐसी जो सेवा जो होता है या भक्तों का जो जीवन जो होता है वो भले ही जीवन प्रत्यक्ष रूप में दिखाई नहीं पड़ता मगर वो अपने वाणी के रूप में उपस्थित रहते हैं, क्योंकि उनके जीवन का आचरण वैसा होता है। इसलिए यहां पर बलि महाराज कह रहे शुक्राचार्य को कि मैं दान इसलिए देना चाहता हूं क्योंकि ये जो भौतिक संपत्ति है तो एक समय खत्म हो जाएगा, लेकिन मैंने जो किया हुआ जो क्रिया है वह हमेशा की रहेगा, इसलिए दान देना चाहता हूं। तो यह है कुछ आशा पूर्वक सेवा करना, कुछ आशा रखकर सेवा करना। फिर वो तीसरा बताते हैं तो सुलभ युद्धि विप्रस ही अनवृत्त तनु त्याज न तथा तीर्थ आयते श्रद्धाए दान त्यजय। तो कहते हैं कि सुलभ युद्धि विप्र एक ब्राह्मण के लिए बहुत ही शुभ जो समय कब होता है, एक क्षत्रिय के लिए बहुत ही शुभ समय कब होता है, जब उसे एक उचित ब्राह्मण प्राप्त होता है। तो कहते कि श्रद्धया येन दान त्यज, वो जब श्रद्धा पूर्वक वो क्षत्रिय जब उसको दान देता है ब्राह्मण को, तो ये उसके लिए वास्तविक एक अच्छा समय का लक्षण है। और वैसे ही मैं क्षत्रिय हूं तो मेरा कर्तव्य बनता है कि मैं बटु ब्राह्मण को या वामन देव को दान दूं। तो यहां पर यहां बलि महाराज तीसरा लक्षण बता रहे, वो है सेवा का, वो है कर्तव्य के रूप में, क्योंकि मेरा कर्तव्य बनता है तो मैं सेवा करूं। फिर वो चौथा बताते हैं कि चौथा कारण बताते हैं कि मैं क्यों सेवा करना चाहता हूं या क्यों दान देना चाहता हूं। हत्वा मणिनाम हरित युद्धे सहित नहीं तो मया, तो कहते हैं कि या तो मैं इन्हें दान दूंगा, या तो मैं इन्हें जीत लूंगा, या तो ये मुझे जीत लेंगे। अगर ये स्वयं हरि है, अगर ये मुझसे छल करना चाहते हैं तो मैं इनको गिरा दूंगा, और अगर मैं अगर इनके बातों को कामयाब या इनकी इच्छा को पूरा नहीं कर पाया तो मैं गिर जाऊंगा। यानी कि वहां पर श्लोक प्रभुपाद तात्पर्य में कहते हैं कि भगवान को कौन गिरा सकता है, कोई नहीं गिरा सकता, केवल एक ही वस्तु भगवान को गिरा सकती है और वह है प्रेम। तो प्रेम ही ऐसी शक्ति है जो भगवान के प्रति अगर कोई प्रेम पूर्वक उनकी शरणागति को ग्रहण करते तो भगवान स्वयं उसके वशीभूत हो जाते हैं। तो ये जो लक्षण जो है सर्वोच्च लक्षण है और वो है प्रेम का। तो यहां पर ये चार प्रकार के विषयों पे मैंने जो चर्चा किया, ये चार प्रकार के विषय क्या है, ये अलग अलग भक्त लोग भगवान की सेवा करते हैं। तो सबसे पहला है जो डर कर, जैसे उदाहरण के रूप में एक पुलिस वो अपना डिपार्टमेंट में अपना काम करता है, क्यों, क्योंकि वो सीनियर पुलिस से डरता है तो वो डर कर कार्य करता है। तो वो क्या वो अपना कार्य कर रहा है लेकिन डर कर, क्योंकि पीछे कोई है। तो दूसरा प्रकार के जो है वो है कुछ हेतु के साथ सेवा करना, जैसे कोई अगर पुलिस डिपार्टमेंट में काम कर रहा है किस लिए, कि उसे कुछ प्रमोशन प्राप्त हो, तो ये भी एक प्रकार का कार्य है, तो वो प्रमोशन के हेतु में कार्य करता है। अब तीसरे प्रकार के जो होते हैं, जैसे कि वो डिपार्टमेंट में वो जो पुलिस काम कर रहा है तो पुलिस का उद्देश्य क्या है, वो ऐसे सोचता है कि ये मेरा कर्तव्य है, इट इज माई ड्यूटी, और वो ड्यूटी को रखते हुए मध्य नजर रखते हुए वो अपना कार्य करता है। तो अगर मान लो कि अगर कोई अगर उसके पुलिस स्टेशन पर भी कोई आया, कोई नागरिक उनके पुलिस स्टेशन पर आया और कहने लगा कि मेरे घर पे चोर घुसा है, पाकर कुछ करिए, तो कहेगा सॉरी 2 मिनट लेट हो गए, मेरा ड्यूटी खत्म। तो वो ड्यूटी से ड्यूटी पर तालमेल रखता है, तो वो है कर्तव्य पूर्वक सेवा करना, कर्तव्य को मध्य नजर रखते हुए सेवा करना। लेकिन ये भी परिपूर्ण नहीं है, ये जितने भी है इसमें परिपूर्णता नहीं है, क्योंकि इसके अंदर भी व्यक्ति के अंदर त्रुटियां दिखाई पड़ती है। जैसे कि एक बार गुरुजी ने 3 शिष्यों को कहा कि तुम पहले शिष्य को कहा कि तुम खुदाई करना, दूसरे शिष्य को कहा कि तुम पौधे लगाना, और तीसरे शिष्य को कहा कि तुम गड्ढा भर देना। तो तीनों लोग लग गए काम में, तो पहला वाला, दूसरा वाला, तीसरा वाला दिन ब दिन ऐसे ही कार्य कर रहा था कि एक दिन देखा कि उन्होंने देखा कि अरे क्या हो रहा है, एक व्यक्ति खड्डा खोद रहा है, दूसरा व्यक्ति भरता जा रहा है। तो उन्होंने पूछा ये क्या हो रहा है, आप किसी और व्यक्ति ने पूछा आज एक व्यक्ति खड्डा खोद रहा है दूसरा भर रहा है, ये हो क्या रहा है। तो इन्होंने कहा हम अपने गुरु के आदेश का पालन कर रहे हैं। बोले लेकिन ऐसे एक खुदाई कर रहा दूसरा भर रहा है, इसमें क्या मिल रहा है। बोला नहीं, हम हमारे कर्तव्य को निभा रहे, बीच वाला मिसिंग है, पौधा लगाने वाला एब्सेंट हो गया है, लेकिन हम हमारा कर्तव्य कर रहे हैं। तो वैसे खुदाई कर रहता जा रहा है, तो वो कर्तव्य के रूप में वो अगर कार्य करता है सोच कर या सेवा भी करता है तो वो भी परिपूर्ण नहीं है। कब तक, जब तक वो पूरी तरह प्रेम पूर्वक नहीं लगता। जैसे वो पुलिस, वो सेवा कर रहा है अपने डिपार्टमेंट में, लेकिन क्या हेतु से कि मैं सबको उचित इंसाफ दूंगा या सबको उचित रक्षा प्रदान करूंगा। इसलिए रात के समय भी उनको अगर अर्जेंट कॉल आता है तो भी वो सेवा में तैयार रहता है। तो वो क्या है, प्रेम पूर्वक सेवा। और यहां पर रंती देव महाराज का जो दिखाई पड़ रहा है कि किस प्रकार वो भगवान के प्रति वो किस प्रकार शरणागत थे, इतनी शरणागत थे कि वो स्वयं कह रहे थे कि मैं सभी के दुखों को स्वयं भोगने को तैयार हूं, लेकिन सबको सुख प्राप्त हो या आनंद प्राप्त हो। चैतन्य चरितामृत में ठीक इसी प्रकार वासुदेव दत्त की विचार आते हैं कि वासुदेव दत्त भी इसी प्रकार के विचार प्रस्तुत किए श्री चैतन्य महाप्रभु के सामने। वासुदेव दत्त कहने लगे चैतन्य महाप्रभु को, जीवेर पाप लान मुनि कर नर्ग भोग, सगले जीवेर प्रभु गुचा भव रोग। वो कहने लगे कि हे महाप्रभु, जितने भी जीव आत्माओं के जो भी कुछ पाप है वो सारे पाप मेरे सर पे दे दो, मैं खुद जाके नरक में भोगने को तैयार हूं, लेकिन बाकी लोगों को आप उतार दो। तो यहां पर वासुदेव दत्त का पर दुख दुखी ये जो विचार, जो लक्षण दिखाई पड़ता है, श्री चैतन्य चरितामृत के उसी श्लोक के तात्पर्य में श्ल प्रभुपाद बहुत सुंदर तात्पर्य में बताते हैं। वासुदेव दत्त के चार पॉइंट को बताते हैं कि किस प्रकार वासुदेव दत्त वो जीसस क्राइस्ट से भी ज्यादा दयालु थे। तो वासुदेव दत्त कैसे जीसस क्राइस्ट से भी दयालु है, लोग विदेश के जैसे लोग बहुत बताते हैं कि आप श्ल प्रभुपाद से हमेशा यही प्रश्न करते हैं, आपने कुछ जीसस क्राइस्ट जैसा कुछ चमत्कार किया है क्या। लेकिन यहाँ पर वासुदेव दत्त जो कि चैतन्य महाप्रभु के जो फॉलोअर हैं, वो वासुदेव दत्त जो कि जीसस क्राइस्ट से भी बढ़कर, तो वो क्या चार पॉइंट बताते, तो बताएं कि सबसे पहले यीशु मसीहा ने केवल अपने ही फॉलोअर्स लोगों का उद्धार किया, लेकिन वासुदेव दत्त क्या कहते हैं कि सभी का भूचा भव रोग, सगले जीवेर पाप लाना मोरे सर, वो सारे जीव के पाप को भोगने को तैयार, यानी कि सबका उद्धार करना चाहते हैं। फिर दूसरा पॉइंट बताते हैं कि यीशु मसीहा ने केवल लोगों के जन्म मृत्यु के चक्कर से केवल उनके पापों को ही धूला, या लोगों के पाप को लेकर ही वो अपने आप को सूली पे चढ़े और केवल लोगों का पाप धोए, लेकिन जन्म मृत्यु के चक्कर से नहीं छुड़ाया। लेकिन वासुदेव दत्त ने क्या किया, वो ये भी चाहते थे कि सबके जन्म मृत्यु के चक्कर भी छूट जाए। फिर तीसरा पॉइंट बताते हैं कि वासुदेव दत्त वो ऐसे ये प्रार्थना कर रहे हैं कि किसी को कोई अगर पाप भी किया है, तो कोई अगर अपराध भी किया है, तो सबका क्षमा हो जाए। लेकिन यीशु मसीह अपराध से उसे छुड़ा नहीं सकते, लेकिन वासुदेव तत्व ने वो भी किया या उस प्रार्थना को भी व्यक्त किया। और चौथा बताते हैं कि यीशु मसीह उन्होंने कुछ पाप को धोने के लिए कुछ विधि को अपनाने बताया, लेकिन वासुदेव दत्त क्या बताते हैं कि कोई विधि पालने की आवश्यकता नहीं, यहां तक कि 16 माला भी नहीं, एक साथ सबका उद्धार कर, यानी कि विदाउट एनी प्रोसेस। तो वैसे वासुदेव दत्त की जो अनुकंपा या लोगों के प्रति जो करुणा वो अगाध रूप में दिखाई पड़ती है। और ये वासुदेव दत्त स्वयं, इनको बताया जाता है कि स्वयं ये प्रहलाद महाराज के ही अवतार के रूप में इसको व्यक्त करते हैं कि जिस जब नरसिंह भगवान ने जब प्रहलाद महाराज को पूछा कि तुम्हें क्या चाहिए मांगो, तो उन्होंने कहा कि अगर मैं आपसे कुछ मांग लूंगा तो ये तो फिर नौकर मालिक का कार्य हो जाएगा, नौकर यानी कि कुछ नौकरी यानी कि कुछ हेतु के साथ कार्य करना, लेकिन मुझे उस प्रकार के कुछ वर नहीं चाहिए। तो ये भक्त जो होते हैं, ये भक्त भक्ति के साथ जो मांगते हैं तो केवल भक्ति ही मांगते हैं। तो वैसे ही यहां पर वासुदेव दत्त जो कि ऐसे उन्होंने अपने ही जीवन को बलिदान देने को तैयार है, और ठीक रंती देव महाराज की भी यही स्थिति दिखाई पड़ रही है कि एक साधु जो होता है, साधु को तुलना किया गया अगरबत्ती के साथ। अगरबत्ती जो होता है वो क्या करता है, वो खुद जल जाता है, लेकिन खुद जलता है लेकिन क्या करता है, दूसरों को वो सुगंध देता है। ये अगरबत्ती का बहुत अच्छा एक लक्षण है, अपने आप को जला देता है। तो साधु जो होते हैं अपने भौतिक जीवन को नष्ट कर देते हैं, किस लिए, इसलिए कि औरों को वो कुछ अच्छी वस्तु को प्रदान कर सके। इसलिए कहा गया है कि साधु संग लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि होए, कि अगर थोड़ा सा भी अगर लव मात्र अगर साधु संग भी हो जाए तो भी उनको पराम सिद्धि प्राप्त हो गया। एक बार नारद मुनि को ये लव मात्र साधु संग का अर्थ क्या इसे ढूंढने के लिए वो स्वयं नारायण के पास गया, तो नारायण ने कहा, नारायण को उन्होंने जब प्रश्न किया कि लव मात्र साधु संग का अर्थ क्या है मुझे बताइए, तो नारायण ने कहा कि पृथ्वी में जाओ, पृथ्वी में एक मछली दिखेगी उनसे प्रश्न करना। तो गए पृथ्वी में और उस मछली का उन्होंने जैसे ही देखा उनसे पूछने के लिए गए कि लव मात्र साधु संघ का अर्थ क्या है, तो मछली ने उनको देखते ही प्राण त्याग दिया। तो वापस आए नारायण के पास, नारायण को कहा तो देह त्याग दिया, तो बोला ठीक है अब उसी जंगल में जाओ, वहीं पर ही तुम्हें एक हिरण दिखेगा उनसे प्रश्न करना। तो वापस आए तो हिरण के पास आए, तो हिरण को जैसे उन्होंने प्रश्न किया लव मात्र साधु संघ का अर्थ क्या है, तो उन्होंने भी नारद मुनि को देखा वो भी प्राण त्याग दिया। वापस गए नारद मुनि और कहने लगे उन्होंने भी प्राण त्याग दिया, ये हो क्या रहा है, बोला जाओ वहीं पर ही तुम्हें निकट के गांव में एक गाय दिखेगी वहां पर जाके प्रश्न करना। तो वो वहां पर गए, उस गाय से मुलाकात हुआ, गाय से पूछा लव मात्र साधु संघ का अर्थ क्या है, गाय ने भी देखा और प्राण त्याग दिया। तो अब ये तो घबरा गए, जिनसे प्रश्न करता है ये तो प्राण त्याग देते हैं। वापस आए नारायण से प्रश्न किए क्या हो रहा है, तो नारायण ने कहा उसी गांव में जाना, एक बालक दिखेगा उससे तुम प्रश्न करना, तुम्हें उत्तर मिल जाएगा। तो वापस आए उस बालक के पास, उसी गांव में उस बालक के पास आकर उन्होंने जैसे ही पूछा कि लव मात्र साधु संघ का क्या लाभ होता है, तो उन्होंने कहा हे ऋषिवर क्या आप मुझे नहीं पहचानते, मैं वही हूँ, पहले आपने मुझे मछली में दर्शन दिया था, फिर हिरण में, फिर गाय में, अब उस समय आपका दर्शन इतना सुलभ हुआ कि मुझे तुरंत मनुष्य से देह प्राप्त हो गया, और अब आपका संग प्राप्त हुआ है तो अब मैं निश्चित रूप से अपने जीवन को कल्याण कर दूंगा। तो यहां पर ये लव मात्र साधु संग, ये जो साधुओं की जो संगति इतनी इसकी महिमा गाई गई है कि कोई अगर थोड़ा सा भी साधुओं के संगति में आता है तो वो अपने जीवन को कल्याण कर देता है। इसलिए जहां पर श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंद में जहां पर विदुर जी की जो विचार या विदुर जी का एक उदाहरण आता है कि किस प्रकार विदुर जी स्वयं, हालांकि उन्होंने पूरा राजपाट त्याग कर चले गए थे, अपमानित होने के बाद भी वो वापस आए। किस लिए? क्योंकि वो चाहते थे कि धृतराष्ट्र का उद्धार हो। तो वो स्वयं अपनी सारे विचारों को न देखते हुए वो दूसरे के कल्याण के लिए वापस उस स्थान पर आकर पुनः अपने भाई को प्रचार करके उन्होंने उसे मोक्ष के गति की ओर अग्रसर कराया। तो ये साधु का इस प्रकार जो स्वभाव, जो दूसरे के दुखों को देखकर इतने दुखी हो जाते कि अपने दुखों को भूल जाते हैं और दूसरे के दुखों को दूर करने के लिए, ये संतों का विचार होता है या संतों का स्वभाव होता है। एक बार एक बिच्छू जो कि पानी तालाब में डूब रही थी तो एक साधु उसे बाहर निकाल रहा था। तो जैसे ही बाहर निकाल रहा था तो वो बिच्छू जो था उनके हाथों में डंक मार रहा था, तो वो छोड़ देता था, फिर बाहर निकालने को देखता था, फिर बिच्छू डंक मारता, फिर छूट जाता था हाथ से, फिर उठाता था, फिर डंक मारा, फिर छूट जाता था। तो किसी ने कहा और कहने लगा कि अरे साधु जी, आप क्या कर रहे हो, वो तो तुम्हें बार बार डंक मार रहा है, छोड़ दो उसे, क्यों उन्हें बचाने के पीछे लगे हो। तो इन्होंने क्या उत्तर दिया, इन्होंने ये उत्तर दिया कि बिच्छू जो है वो स्वभाव से ही डंक मारता है, ये बिच्छू का स्वभाव है, लेकिन वो अगर अपना स्वभाव नहीं छोड़ रहा है तो मैं साधुओं के अपना स्वभाव क्यों छोड़ू। तो मेरा स्वभाव है कि उनकी रक्षा करना और मैं बार बार करता रहूंगा। इस प्रकार साधुओं का जो जीवन इस प्रकार होता है। रामायण में जहां पर सीता देवी हनुमान जी को ये बताते हैं कि वास्तविक साधु कैसे होते हैं, उस समय का वर्णन है जब रावण का वध हो चुका था तो प्रभु रामचंद्र जी ने हनुमान को कहा, जाओ सीता जी को संदेश दे दो कि रावण मर गया। तो हनुमान आए सीता जी के पास और सीता जी के पास आकर उन्होंने कहा कि रावण की हत्या हो गई है, प्रभु रामचंद्र जी विजय हो गए। सीता जी अति प्रसन्न हो गई और कहने लगी, वाह हनुमान, तुमने मुझे इतना सुंदर मिठास संदेश दिया, मैं इससे सुनकर बहुत खुश हो चुकी हूं, मैं इतनी प्रसन्न हो गई, मांगो तुम्हें क्या चाहिए, क्या तुम्हारी इच्छा है मांगो, मैं देने को तैयार हूं। तब इन्होंने कहा हनुमान ने कि आपके अगल बगल जो रक्षक रावण के चेले लोग हैं ये सारे राक्षस लोगों को देखकर मुझे बड़ा गुस्सा आता है और ये राक्षस लोग जो कि आपको अपशब्द कहते थे इनको देखकर इतना क्रोध आता है कि मुझे तो ऐसे लगता है कि इनको मैं इतना पीटूं, इतना बुक्का दूं, इतना लात मारूं, इतना तमाचा मारूं कि मार मार के इनका दांत तोड़ दूं और फिर इनके सर से इनके बाल को खींच लूं और फिर जैसे कपड़े धोते वैसे इनको धोऊं और फिर इन्हें मार दूं। तो ये मेरी ख्वाहिश है, आप केवल इशारा करो और केवल ये बताओ कि कौन से राक्षस ने आपको ज्यादा परेशान किया। तो सीता जी को केवल एक इशारा करना ही था या कुछ बोलना भी नहीं था, मुंडी नीचे कर दिए होते तो भी काम हो जाता, लेकिन सीता जी ने कहा नहीं। सीता जी कहने लगी, जो भक्त जो वैष्णव जो वास्तविक साधु होते हैं, साधुओं का जीवन कैसे होता है, तो वो बताते हैं कि एक साधु जो होते हैं वो अब दूसरे के पाप में कभी लगते नहीं और साथ में अपने आप को बचाने के लिए भी कभी पाप नहीं करते। इसलिए तुम ये कार्य करना उचित नहीं है। तब एक वहां पर एक कहानी बताती है, तो सीता महारानी वहां पर एक शेर और एक भालू की कहानी बताती है। तो बताती है कि एक बार शिकारी जो कि शेर का शिकार करने के लिए पीछे भाग रहा था और वो शेर अपने आप अपने प्राण की रक्षा करते हुए भागे जा रहे थे और यहाँ पर एक शिकारी भागते हुए उनके हाथ से जो हथियार था वो गिर पड़ा और हथियार जब गिर पड़ा तो शेर ने देखा कि अभी ये बिना हथियार का है, इनका हाथ खाली है। तो शेर ने अब आक्रमण उस पर शुरू किया। अब शेर उनके पीछे भागा। अब ये शिकारी भागते हुए अपने प्राण की रक्षा करते हुए एक पेड़ के ऊपर कैसे तो चढ़ गया। अब चढ़ गया तो उन्होंने देखा पेड़ पे चढ़ गया, अब शेर तो नहीं चढ़ पा रहा है पेड़ पर। तो शेर ने देखा कि उसी पेड़ में एक और एक जो कि एक भालू वो भी ऊपर चढ़ा हुआ है। तो उन्होंने शिकारी ने शेर ने कहा भालू को कि देखो ये शिकारी जो है तुम्हारा और मेरा दोनों का दुश्मन है, इसलिए क्या करो तुम इन्हें धक्का मारो, बस हम दोनों का दुश्मन एक साथ तमाम हो जाएगा। तो यहाँ पर ये शिकारी भालू को देखकर हाथ जोड़ने लगे, मेरी रक्षा करो, मुझे ऐसे मत करिएगा। तो भालू ने देखा शिकारी को, तो भालू ने कहा कि नहीं मैं नहीं कर सकता, वो मेरा शरण लिया, मैं ऐसे नहीं करूंगा। और फिर वो ऐसे कहकर भालू वहीं पर ही सो गया उसी पेड़ के डांगली में। यहां पर फिर शेर ने देखा तो शेर ने दूसरा आइडिया सोचा। तो शेर ने कहा शिकारी को कि देखो शिकारी, ये भालू जो है, अगर ये भालू अभी सोया हुआ है, अगर तुम इसको के मार के नीचे जाते हो तो मेरा पेट तो भर जाएगा, मैं यहां से चला जाऊंगा, मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, नहीं तो मैं तब तक यहां से जाऊंगा नहीं तुम्हें जब तक खाऊंगा नहीं। तो तुम्हें अगर अपने आप की रक्षा चाहते तो तुम्हें भालू को धक्का दो तो मैं चला जाऊंगा। तो शिकारी ने सोचा ये तो अच्छा है, शेर से बचने का तो आइडिया अच्छा है। तो वो शिकारी ने भालू को धक्का दिया। अब जब भालू को धक्का दिया तो भालू गिरता हुआ, वो भालू इतना निपुण था कि उन्होंने दूसरे डांगली को पकड़ लिया और नीचे नहीं गिरा तो बच गया। अब बच गया तो भालू शिकारी को देख रहा है और शिकारी शेर को देख रहा है और फिर शेर भालू को कहने लगा देखो भालू, ये शिकारी भाई कहता था ना शिकारी बड़ा बदमाश है, अब भी मौका उसे धक्का दे दो, देखो तुम्हारे साथ धोखा दिया। तब भालू कहने लगा ना ही हम किसी और के पापों में लगते हैं और ना ही अपने आप की रक्षा करने के लिए दूसरों को पाप में लगाते हैं, इसलिए मैं ये कार्य नहीं कर सकता, वो मेरा शरण लिया है तो भले ही वो मेरे साथ इस प्रकार बर्ताव कर रहा है लेकिन मैं नहीं कर सकता। और तब सीता माता सीता इस प्रकार बताते हुए हनुमान को ये शिक्षा देते हैं कि ये जितने भी ये राक्षस लोग हैं सब रावण के अनुचर लोग हैं, उनके सेवक लोग हैं, ये लोग बेचारे क्या करेंगे, इसलिए बेहतर है कि इन्हें छोड़ दिया जाए। तो माता सीता के हृदय में उस समय भी दया की भावना थी उन सारे व्यक्तियों के प्रति। तो ये होता है वास्तविक साधुओं का विचार या हृदय, पर दुख दुखी, दूसरे के दुख को देखकर स्वयं दुखी हो जाना। हरे कृष्ण। कोई प्रश्न, कोई जिज्ञासा है थोड़ा, किसको कुछ कमेंट
है?
अच्छा
हाँ होता है कि बड़ी महाराज टेस्ट है या
हाँ, बहुत अच्छा प्रश्न है। लेकिन ये वास्तविक बलि महाराज शुक्राचार्य को नीचे के स्तर से प्रचार कर रहे थे, निचले स्तर से प्रचार कर रहे थे। और ये दोनों के विषय में अगर चर्चा किया जाए कि दोनों में श्रेष्ठ कौन है, तो उसके लिए तो योग्यता तो नहीं है कि वो दोनों में श्रेष्ठ कौन है। आप कुछ अगर बता सकते तो भाई कि बलि महाराज श्रेष्ठ है, रंती देव श्रेष्ठ है। एक बार कमलोचन प्रभु ने भी क्लास में यही बताए थे कि हमारी जो योग्यता नहीं है तो वो योग्यता पर जजमेंट नहीं देना है, ऐसे उन्होंने बताया। तो इसलिए है कि वैसे समय पर हमें उस टॉपिक को नहीं निकालना चाहिए कि जजमेंट किसका, कौन श्रेष्ठ है कौन। अभी जैसे कि वासुदेव दत्त और जीसस क्राइस्ट, ये दोनों का जो जजमेंट दिया, ये जजमेंट भी अपने तरफ से नहीं है, ये प्रभुपाद के द्वारा। तो प्रभुपाद के द्वारा होने के कारण वो दे सकते हैं, नहीं तो जीसस क्राइस्ट भी बहुत बड़े भक्त है, यीशु मसीह भी और वासुदेव दत्त भी, लेकिन दोनों में से कौन श्रेष्ठ है हम अपनी कल्पना से नहीं समझ सकते, लेकिन आचार्य की दृष्टि से समझ सकते हैं। तो वैसे यहाँ पर बलि महाराज, हाँ हाँ प्लीज बताइए। कैसे समझेंगे आप? ऐसे देखा जाए तो मैंने बोल सकता हूँ, बोल भी सकता हूँ तो अपराध ना हो जाए, इसलिए मैंने बोलना चाहता हूँ। आप कुछ बोलिए। नहीं नहीं आपको पता होगा। ऐसे कह सकते हैं ना कि आप बताइए, छुट्टी है तो सही करिएगा। बलि महाराज ने अपना सर्वोच्च समर्पण कर दिया था और रंती देव महाराज भी अपना सर्वोच्च समर्पण कर रहे हैं, लेकिन साथ में रंती देव महाराज का एक और एक प्लस पॉइंट दिखाई पड़ रहा है कि वो दूसरे के दुखों को भी अपने सर पे लेना चाहते और खुद नरक या वो दूसरे के दुखों को लेकर भोगना चाहते और दूसरे को खुश रखना चाहते। ये लक्षण अब आप बताइए क्या सही है क्या गलत।
देखिए
हाँ
है, हाँ
वो
भगवत भाव को पकते हैं, भजन करते हुए जीव भगवत भावना को पकड़ लेता है, तो भगवत भाव को पकड़ने से वो समस्त जीवों के प्रति स्वाभाविक दया उठती है। लेकिन ऐसा देखा जाता है बात के सुनों में भी मालूम पड़ता है तो भगवान को इतना प्रेम नहीं किए हैं जितना बलि महाराज, इसलिए बलि महाराज का नाम महादंड है, रंती देव का नहीं है।
अच्छा
भगवान को प्रेम करना समस्त जीवों का अपने पर लेना, उसको भगवत स्वभाव आ गया, इसलिए रंती देव ये मांग रहे हैं जैसे प्रहलाद महाराज। नहीं लेकिन परमात्मा की चिंता अगर जहाँ भक्तों के साथ की जाएगी है, तो उन प्रेमी को भक्ति में निष्ठा का वर्णन है, जो भक्ति में निष्ठ थे निष्ठा के लिए सुंदर महाराज के चरित्र महाराज को सुनते थे। गुरु महाराज और साधना में अधिक थे, इसलिए उनका महाप्रभु उस दोनों का चरित्र बार बार सुनते थे, क्योंकि महाप्रभु सब भक्तों को भक्ति में इष्ट का लगाना चाहते हैं कि ऐसे दृढ़ता के साथ जैसे तुमने भजन तुमने बहुत प्राप्त किया है और भक्ति में निष्ठा कैसे ना प्रदान। लेकिन इस पर भी समाधान होता है बात भागवत में जो वर्णन करते हैं तो प्रहलाद का क्रम पहले
अच्छा ध्रुव महाराज का बात
नहीं ऐसे नहीं, प्रहलाद महाराज को पहले क्रम में रखते हैं, उनके बाद वाले भक्त जैसे उनके पांडव लोग हैं की बात में ये तो सभी लोग स्वभाव पकड़ेगा, जब भजन करते हैं तो सभी का स्वभाव इसका होगा ही, अगर ये स्वभाव नहीं होगा तो व्यक्ति भजन की स्थिति ही नहीं समझे। लेकिन भगवान को कौन ज्यादा प्रेम करता है
बलिमान,
ये बात है तो बलिमान की स्थिति का इसलिए है, इसलिए वो
हमारा अधूरा क्लास पूरा हो गया। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा।